our people do not do bad things? Do we need to restructure these apps? Okay.
So we've got a few questions, and no doubt more will come.
तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें कोई शंका नहीं कि और ज़्यादा भी प्रश्न आएंगे।
I was trying to group them, but we'll just take them as they come. So start from the top.
तो मैं उनका एक समूह बनाने वाला था, लेकिन जैसे वो आते हैं वैसे ही उनको हम लेंगे। तो पहला प्रश्न है, is there place for rebirth in Buddhism? If so, what are the factors in influencing rebirth? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के लिए कोई स्थान है क्या? और अगर है, तो किन कारणों की वजह से पुनर्जन्म होता है?
Well, there's a very straightforward answer.
तो इसका एकदम सीधा साधा उत्तर है।
And that is that there is a place for rebirth in Buddhism, or again becoming in Buddhism.
तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के लिए स्थान है, या यूँ कहिए कि पुनर्भव के लिए।
In fact, I'd say that it's universal in Buddhism that a belief in that.
तो बौद्ध धर्म में ऐसा होना ये विश्वास जो है वो वैश्विक है।
And it seems completely certain that the Buddha himself taught that.
और ये बहुत ही निश्चित तौर पे कहा जाता है कि बुद्ध ने खुद भी इसके बारे में बोला है।
So I've never read of any dispute in Buddhism about it.
और बौद्ध धर्म में इसके संदर्भ में कोई वाद विवाद है इसके बारे में मैंने कभी कोई नहीं सुना।
Of course, amongst modern Buddhists in India, there is some question.
लेकिन भारत के जो आधुनिक बौद्ध हैं, वो इसके बारे में प्रश्न उपस्थित करते हैं।
And especially those who are Buddhists because of Dr. Ambedkar.
और खासकर वो लोग जो कि बाबा साहब की वजह से बौद्ध बने हैं।
And it's difficult to say completely clearly what Dr. Ambedkar himself thought and taught about this subject.
और बाबा साहब अंबेडकर स्वयं इस बारे में क्या सोचते थे ये बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से बताना मुश्किल है।
So I just mention a little bit of my thinking about that.
तो मेरा इसके बारे में क्या सोचना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहूंगा।
I think very obviously Dr. Ambedkar's concern was that the doctrine of rebirth was not used to reinforce caste.
तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बाबा साहब का उद्देश्य ये था कि पुनर्जन्म की जो संकल्पना है वो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ऐसा था।
Because certainly in popular Indian belief, caste is the result of previous karma.
क्योंकि आमतौर पे जो भारतीय विश्वास है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जाति जो है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है।
And very often the notion of rebirth is very much tied up with caste.
और बहुत बार ये जो पुनर्जन्म की संकल्पना है इसको जाति के साथ जोड़कर देखा जाता है।
And of course Dr. Ambedkar was an implacable enemy of casteism.
और बाबा साहब जो थे जाति व्यवस्था के कट्टर दुश्मन थे।
So he was obviously trying to work his way through that problem.
और इस समस्या के बीच में से वो अपना मार्ग ढूंढ रहे थे।
And in the Buddha and his Dhamma, which is his principal work on Buddhism, his response is not entirely finished.
और बौद्ध और धर्म में उनका इसके बारे में जो प्रतिक्रिया है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
In the preface, he questions the notion.
तो उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है उसमें वो इस संकल्पना को प्रश्न पूछते हैं।
But there are many quotations throughout the work that refer to rebirth.
लेकिन उस पुस्तक में कई जगह ऐसे उल्लेख आते हैं जिसमें से पुनर्जन्म का कल्पना मिलती है।
My own impression is that he was trying to think these things through.
तो मेरा ऐसा मानना है कि वो इन चीजों के मध्य में से एक विचार अपना बना रहे थे।
And unfortunately he died before he was able to give a complete and coherent account.
और उनका पूरा विचार क्या है ये बताने से पहले ही दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई।
But I found a reference in his secretary's book, Nanak Chandratu's book, which makes clear that he did believe in rebirth.
लेकिन उनके जो सेक्रेटरी है नानक चंद रत्तू उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक में एक संदर्भ मिलता है कि वो खुद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
So he quotes him as saying in a talk at Ashok Vihar in Delhi in 1956.
तो 1956 में अशोक विहार में उन्होंने जो प्रवचन दिया था उसमें उन्होंने कहा है।
And he says something like, I believe in rebirth, and I can demonstrate its truth.
तो उन्होंने उसमें कहा था कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ और ये कैसा सत्य है ये मैं आपके सामने रख भी सकता हूँ.
So it's one of the great tragedies of his early death that his thinking about this, as well as many other matters, is never complete.
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पहले ही मृत्यु हुई और इसके बारे में उनका विचार और भी अन्य चीजों के बारे में उनका विचार सामने नहीं आ सका.
My own impression is that it was important to him to make sure that rebirth was not used to reinforce caste or even class.
तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें ऐसा लगता था कि पुनर्जन्म की जो संकल्पना है कास्ट जाति या वर्ण इनको वापस ताकत देने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए.
And of course, the Buddhist notion of again becoming does not imply caste.
और बौद्ध धर्म में जो पुनर्भव की संकल्पना है उसे जाति से जोड़कर नहीं देखा जाता.
It certainly doesn't necessarily imply it.
और के मतलब जरूरी नहीं है कि उससे जाति ऐसा कोई विचार आता है.
So I think it's important to say that before talking any more about the subject, because I know many of you are followers of Dr. Ambedkar.
तो ये सब कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं.
It really is such a tragedy for modern Buddhism that Dr. Ambedkar died before he could clarify so many issues.
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे विचारों को स्पष्ट करने से पहले ही बाबा साहब की मृत्यु हो गई.
In many ways, he was the first Buddhist in the modern era to try to apply modern standards of intellectual clarity to Buddhism.
तो बहुत ही तरीके से देखा जाए तो आधुनिक जगत में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म को आधुनिक स्वरूप पे और एक तरह से बौद्धिक सुस्पष्टता देकर रख रहे थे.
But let me come to the question itself.
लेकिन अब हम इस प्रश्न की तरफ आते हैं.
So yes, in all Buddhist traditions, it is taught that independence on this life, a new life arises.
तो सारे ही बौद्ध परंपराओं में ये सिखाया जाता है कि इस जन्म पर आधारित आपका नया जन्म होता है.
If you don't believe it, that's fine. You can still be a good Buddhist.
तो अगर आपका इसके पर विश्वास नहीं है तो भी ठीक है, तो भी आप एक अच्छे बौद्ध बन सकते हैं.
You can still follow the precepts, you can still meditate, you can still see, you can still develop prajna.
और आप फिर भी शीलाचरण कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो और प्रज्ञा भी विकसित कर सकते हो.
That is the universal teaching.
लेकिन ये जो है वैश्विक ऐसी एक शिक्षा है.
Of course, in the background of that teaching is the teaching of anatta.
तो लेकिन इसके पार्श्वभूमि में जो शिक्षा है वो है अनाता की.
There's nothing permanent about us.
कि हमारे स्वयं के बारे में कुछ भी पक्का या ठोस ऐसा नहीं है.
So in a sense, you today are the rebirth of you yesterday.
तो एक तरह से आज के आप कल के आपका पुनर्जन्म हो.
The person you are now is different from the person you were at the beginning of the event.
और आज जो आप व्यक्ति हो वो इस सत्र या इस शिविर के शुरुआत होने से पहले दूसरा व्यक्ति था.
Of course, there's a continuity of the body.
शरीर जो है वो आपका चला आ रहा है.
But even the body is constantly changing.
लेकिन फिर आपके शरीर में भी निरंतर बदलाव आ रहे हैं.
I believe that there's no cell in the body that lasts more than 7 years.
तो मुझे पता है कि आपके शरीर में ऐसी कोई भी पेशी नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक जीवित रह सकती है.
So the body I've got now is only a sort of continuity from the body that I had 64 years ago.
तो अभी मेरा जो शरीर है वो सिर्फ एक उस शरीर का मतलब आगे चलाना है जो शरीर मुझे 64 साल पहले मिला था.
And it's even more true of mental factors.
और मानसिक घटकों के बारे में भी उतना ही सही है.
So the teaching is that when this life ends, there's a momentum that sets up or contributes to the setting up of a new life.
तो ऐसी शिक्षा है कि जब ये जीवन अंत हो जाता है तो एक प्रकार की शक्ति वहाँ होती है जो दूसरे जीवन जिसकी वजह से दूसरा जीवन आपका आकार लेता है.
In a way, you can't say that you will be reborn.
तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका पुनर्जन्म होगा.
Because identity depends to such a large extent on memory.
क्योंकि आपकी पहचान जो है एक तरह से आपकी याददाश्त पर निर्भर करती है.
And I can't remember existing before.
और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरा पहले कभी अस्तित्व था.
And well, maybe in another life I won't remember having lived in this life.
और अगर कोई अगला जन्म भी हो तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस जीवन में जिया था.
Or to put it another way, that whoever arises in dependence on me won't remember me.
तो ऐसा कहा जा सकता है कि मेरे ऊपर आधारित जो कोई भी दूसरा निर्माण होगा उसे मैं याद नहीं रहूंगा.
But it's said traditionally that it is possible to remain conscious through the process of rebirth.
लेकिन परंपरागत तौर पे ऐसा कहा जाता है कि जब आपका पुनर्जन्म हो रहा है उस प्रक्रिया के दौरान आप जागरूक रह सकते हो.
So the in traditional language, the stream entrant enters his future mother's womb mindfully.
तो परंपरागत तौर पे कहा जा सकता है कि स्रोतापन्न जो होता है वो अपने भविष्य की माता के गर्भ में बहुत ही जागृति पूर्वक प्रवेश करता है.
But continuity is lost in the course of rebirth.
लेकिन ये जो सातत्य है उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाता है, खो जाता है.
The non-return of the anagamani is does remember both entering and leaving.
और अनागामी जो होता है उसे इस प्रवेश प्रक्रिया और वहां से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में भी ज्ञान होता है.
I'm just telling you what the tradition says. I don't personally know.
तो परंपराएं क्या कहती है यही मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. व्यक्तिगत तौर पे मुझे पता नहीं है.
So what factors influence rebirth?
तो कौन सी ऐसे बातें हैं जो पुनर्जन्म को प्रभावित करती हैं?
Well, of course, there are physical factors.
तो शारीरिक बातें होती हैं.
You could say there's even DNA.
आप कह सकते हो कि आपका DNA है.
That the new life arises to some extent in dependence on merely physiological factors.
तो आप ऐसा क्या कह सकते हो कि जैविक ये जो भी घटक है उसके ऊपर ही आधारित आपका नया जीवन बनता है.
But in some way that it's difficult to account for, the karmic momentum of the previous life influences the arising of the new life.
एक तरीके से इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी होगा कि आपके जो कार्मिक बातें हैं, कर्म की जो बातें हैं, उसका आपके पुनर्जीवन पर प्रभाव पड़ता है.
Perhaps I can give an illustration from ordinary life.
तो साधारण जीवन से मैं आपको एक उदाहरण देना सकता हूँ.
So things that happened to you in your childhood have an influence on you now.
तो आपके बचपन में जो कुछ भी बातें हुई हैं, उसका प्रभाव आपके अभी पर है.
So for instance, you know, it's well known that in the first 3 years of life, a lot of mental conditioning is laid down.
तो जैसे आपको मालूम है कि आपके जीवन के प्रथम तीन वर्ष पे बहुत सारे आपके ऊपर मानसिक संस्कार होते हैं.
For instance, if a mother experiences postnatal depression, it influences the child in future life.
तो उदाहरण के तौर पे अगर कोई माता है और उसको ऐसा कोई
postnatal depression.
Postnatal depression जैसे कुछ अनुभव हो रहा है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है. What is postnatal
depression? After birth. The depression that comes after giving birth.
तो जब प्रसूति के बाद एक तरह का डिप्रेशन होता है उसे माता अनुभव करती है और उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है.
So something's influencing you, but you don't really know what it is,
तो कुछ किसी चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होता है लेकिन आप नहीं जानते कि क्या है.
So it's like that as regards what happened in the previous life.
तो ये इसी तरह से है कि आप नहीं जानते कि पिछले जन्म में क्या हुआ है.
That influence is still there in your mind.
लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी भी आपके मन के ऊपर होता है.
But you can't really see what it is.
लेकिन आप देख नहीं पाते हो कि ये क्या है.
Unless you've got some particular reason for getting some insight into it.
और जब तक आपके पास कोई खास कारण नहीं आता है कि इसके बारे में आपको कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है.
So that very briefly is the teaching.
तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये शिक्षा है.
There's a continuity of ever-changing elements.
तो तो निरंतर बदलते रहने वाली चीजों की ये एक प्रकार से निरंतर प्रक्रिया है.
And your karma is among those influences.
और इन प्रभावों में से आपका कर्म जो है वो भी एक प्रभाव डालने वाली बात है.
Personally, I don't find that difficult to believe.
तो व्यक्तिगत तौर पे इस पे विश्वास करना मुझे मुश्किल नहीं लगता.
Probably most people who have a small child will also get some sense of that.
तो बहुत से लोग जिनका छोटा सा बच्चा है उन्हें भी इस बात का कुछ झलक मिल सकती है.
From very early on, there's a little personality there.
तो बहुत ही छोटे बच्चे में भी अपना एक व्यक्तित्व होता है.
Even within, apparently, I've not seen this myself, but within a few hours, you get some sense of a little personality there.
तो कुछ ही घंटे का भी बच्चा हो तो भी उसके अंदर जो है आपको एक व्यक्तित्व की झलक मिलती है.
So, maybe you want to account for that in physiological terms, but it's very difficult to do so.
तो इसको आप अगर फिजियोलॉजिकल दृष्टि से देखते हैं तो समझना बहुत मुश्किल होगा.
But yes, traditionally we would say that that's some influence from the past.
लेकिन परंपरागत तौर से हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व का कुछ तो भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है.
So I don't know whether that satisfies the questioner, but that's really all I can say in brief.
तो इस प्रश्न का ये पूरी तरह से उत्तर है या नहीं मैं नहीं कह सकता है, लेकिन सारांश रूप से या संक्षिप्त रूप से मैं ये कह सकता हूँ.
In the end, I'd say don't worry about it too much.
तो आखिर में मैं कहूँगा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए.
Our teacher says that if you don't believe in rebirth, then you better hurry up and gain enlightenment now.
तो मेरे तो गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर आपका पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है तो आपने जल्दी करना चाहिए और इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए.
But personally I feel that it makes a lot of sense that the efforts that I'm making now are not going to be lost.
लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा विश्वास है कि अभी मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे.
I'm doing my best to practice the Dhamma.
धम्म का आचरण करने के लिए मैं अपने सारे प्रयास कर रहा हूँ.
मैं
शायद पूरी अपनी शक्ति नहीं लगा रहा हूँ लेकिन मैं दूसरों को जो है धम्म आचरण के लिए मदद कर रहा हूँ.
And what I find it encouraging to think that that effort will not be lost.
और मुझे इस चीज से प्रेरणा या प्रोत्साहन मिलती है कि ये प्रयत्न जो है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे.
And that effort will continue in some way.
और ये जो मेरे प्रयास है किसी तरीके से ये इसको एक निरंतरता मिलेगी.
But if you find it difficult to believe or you find it problematic to believe, well, don't worry about it.
लेकिन अगर आपको इसमें विश्वास करने के लिए कठिनाई लग रही है तो मत कीजिए.
You'll find out after you're dead.
तो जब आप मर जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा.
If nothing happens, then well, or rather, if nothing happens, you won't know it doesn't happen.
और कुछ नहीं भी होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ नहीं हुआ.
If something does happen, then well, at least for a while, you'll know it's happening.
और अगर कुछ होता है तो थोड़े समय के लिए क्यों ना आपको पता चलेगा कि हो रहा है.
It's not something to worry about.
तो इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं.
My own relation to it is that I've had some experiences that suggest that there's something working within me that is not to do with this life.
तो मेरा अपना एक अनुभव है कि मेरे अंदर एक कुछ ऐसी चीज कार्यरत है जिसका कुछ भी लेना देना इस जन्म में से नहीं है.
I've talked about this before in India, but I'll mention it again just because it does illustrate the point.
तो भारत में मैंने इसका जिक्र एक बार पहले भी किया है लेकिन मैं वापस करूंगा क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट होती है.
I did a long solitary retreat in 2008.
तो 2008 में मैंने एक लंबा एकांतवास किया था.
I was on my own for 5 months.
तो 5 महीने मैं सिर्फ अकेला था.
That's a very interesting experience. I could tell you a lot about that.
और मुझे बहुत ही रोचक ऐसा अनुभव आया. मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ.
Not a particularly easy experience altogether.
और ये कोई बहुत ही सहज ऐसे अनुभव नहीं थे.
Because with that space, you really see very deeply into yourself.
क्योंकि इतना जो लंबा अंतराल था आप सही में खुद को बहुत गहराई से देख सकते हैं.
And to begin with, I found myself facing up to all sorts of unskillful actions I'd done all the way through my life.
और उस दौरान ऐसा मैं मुझे नजर आ रहा था कि मैंने बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे अकुशल कर्म किए हैं.
Things that I didn't even think of as unskillful.
और ऐसी चीजें जो मुझे लगती भी नहीं थी कि अकुशल हैं.
But I had to sort of face them all.
लेकिन उन सब चीजों का मुझे सामना करना पड़ रहा था.
And I just had to face them one by one and so yes, I did that.
और एक एक करके मैं उनका सामना कर रहा था और स्वीकार कर रहा था कि हाँ मैंने ये किया है.
Yes, I regret that.
और हाँ मुझे इसका पश्चाताप हो रहा है.
And I felt in a way I cleaned out my cupboard.
और एक तरह से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने जो है अपनी अलमारी साफ कर दी है.
I cleared away all the old lumber.
और जो भी उसमें पुराना कचरा था वो मैंने साफ कर दिया.
But I had a strange sense there was something else.
लेकिन मेरे अंदर बहुत ऐसी एक भावना आ रही थी कि और भी कुछ है.
I had a strong feeling of regret, but I couldn't say what it was about.
बहुत ही पश्चाताप की मेरे अंदर एक भावना थी लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था कि किस लिए.
So I just allowed myself to sort of associate.
तो फिर मैंने अपने आप को ऐसे खुला कर दिया कि उसके साथ जुड़ने के लिए.
And the thought that came into my mind was, I've killed.
और फिर मेरे मन में विचार आया कि मैंने हत्या की है.
And as far as I'm aware, I haven't killed in this life.
और जहां तक कि मुझे याद है कि इस जीवन में मैंने कभी हत्या नहीं की है.
I'm not advancing this as proof, by the way. This is just my own experience.
तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी चीज का सबूत है. मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ.
And just I thought, well, yes, it seems as if I've killed.
और मैं देख रहा था कि हाँ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैंने हत्या की है.
And then the thought just occurred to me, well, I was born in 1947. The Second World War ended in 1945.
और फिर मेरे मन में विचार आया कि मेरा जन्म जो है 1947 में हुआ, तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था.
The First World War ended in 1918.
और पहला जो विश्व युद्ध है 1918 में खत्म हुआ था.
My father was an officer in the British Navy.
और मेरे जो पिता है ब्रिटिश नेवी में अधिकारी थे.
So it, well, that's by the way, but it's not unlikely that if there was a previous life, I would have been in the forces.
तो ये वो अलग बात है उनके पिता की, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं था सोच पाना कि अगर मेरा कोई पुराना जन्म था तो शायद मैं किसी सेना में हो सकता था.
And my father was certainly was involved in killing.
और मेरे जो पिता थे क्योंकि सेना में थे, हत्या से उनका संबंध था.
So you see what I mean? If you're in the army, if you're in the navy, well, you fire guns.
तो क्योंकि आप सेना में हो, नौसेना में हो, तो आप बंदूक चलाते हो.
So when I had that thought, I felt some relief.
और जो जब ये विचार मेरे अंदर आया तो एक तरह से मैं शांत हुआ.
So I just sort of let myself come to the conclusion, well, in a previous life I was in the army, in the navy, I don't know what, and I killed.
और फिर मैंने ये बात सोची कि हाँ पिछले जन्म में शायद मैं सेना में था, नौसेना में था, और मैंने हत्या हो गई होगी मेरे हाथ से.
And when I sort of let myself think like that, the feeling relieved.
और जब मैंने अपने आप को इस तरीके से सोचने के लिए खुला किया था तो वो जो भावना थी वो शांत हो गई.
Well, I can't say that that's proof.
तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सबूत है.
But it satisfied me.
लेकिन उससे मुझे संतोष हुआ.
It dealt with something deep in me.
और मेरे अंदर बहुत गहरा ऐसा कुछ था, उससे इसका निवारण हुआ.
Something that had been there all my life went.
तो सारी जिंदगी मेरे अंदर जो एक चीज थी वो चली गई.
So I think that's the way that karma is reflected in your present experience.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ चीजों में से जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आगे आते हैं.
Then the strange fact that as an Englishman in the 1960s I found my way to the Buddha Dhamma.
और बहुत ही अजीब बात है कि एक 1960 में एक अंग्रेज के द्वारा मुझे बौद्ध धर्म में अपना रास्ता मिला.
And a very definite feeling that this is what I'd been looking for.
और एकदम से मेरे मन में ये ख्याल आया कि यही तो मैं ढूंढ रहा था.
It seemed to me I was just finding what I'd had before.
और मेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं जो पहले ढूंढ रहा था वही ये है.
Maybe I was a soldier who meditated, I don't know.
तो शायद मैं ऐसा भी एक व्यक्ति था जिसने कभी ध्यान किया होगा.
So yes, I'm sorry, I'm not trying to use these as proof.
तो मैं वापस क्षमा चाहूंगा, मैं कोई इन चीजों को सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं.
But I'm talking about what at least was a satisfying story which seemed to deal with experiences that I had.
तो मेरे अंदर जो भी कुछ अनुभव मुझे हो रहे थे उन अनुभवों को इन चीजों से कुछ इन कहानियों से कुछ समाधान मिल रहा
था. The only other thing I can say is that in meditation, which I've done over the years, I've seen something about the nature of consciousness that just seems impossible to envisage being destroyed.
तो इतने सालों से मैं जो ध्यान कर रहा हूँ तो अपनी जागृति के बारे में भी मतलब एक चीज मैं देखते आ रहा हूँ कि जागृति की जो प्रकृति है वो ऐसी कुछ है कि वो नष्ट नहीं हो सकती.
It just seems to me that consciousness is a force that cannot just be lost.
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो चित्त है या जागृति ऐसी एक शक्ति है जो नष्ट नहीं होती.
So I find this way of thinking quite easy to believe in.
तो इस प्रकार की ये जो सोच है इसकी वजह से विश्वास करने में मुझे आसानी होती है.
But in the end, it doesn't matter whether you believe it or not.
लेकिन अंत में आप इस पे विश्वास करते हो या नहीं करते इससे फर्क नहीं पड़ता.
What matters is that you develop skillful mental states now.
तो इस बात का महत्व है कि आप कुशल मनोवस्थाएं अभी निर्मित करो.
Whether there's a life that follows or not, you need to develop skillful mental states.
तो पता नहीं आगे कोई जीवन है भी या नहीं लेकिन आपको अभी अवस्थाएं निर्माण करनी है.
And I'd certainly never want to argue that somebody else was suffering or in poor state or whatever because of their previous karma.
और मैं इस बात पे कभी वाद नहीं करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति दुख में है या गरीब है तो ये उसके पूर्वजन्म के कर्म के कारण है.
I think the effect is mainly internal.
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रभाव है वो अंदरूनी होता है.
So I hope that's at least given some clarity on the topic.
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी स्पष्टता इस विषय पे इससे आई होगी.
Anything that follows on from that?
उसमें से कुछ प्रश्न आ रहे हैं?
Reasonably satisfied.
तो लगता है आपका समाधान हो गया.
You can't be completely satisfied because it's not something that's subject to direct proof.
तो इसका समाधान होता है क्योंकि किसी भी चीज का सीधा या पक्का सबूत आपके पास नहीं है.
But perhaps the most important thing is that we don't allow ourselves to simply believe in matter. The important thing is we don't simply believe that matter is the only reality.
तो एक बात यह है कि हम इस बात पे विश्वास नहीं करते मैटर पदार्थ जो है वही सिर्फ वास्तविकता है.
I think that's the great problem of the modern age.
और आधुनिक जग का ये एक बहुत बड़ी समस्या है.
People take science to prove that there is only matter.
लोग विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं ये साबित करने के लिए कि वहाँ सिर्फ पदार्थ हैं.
But of course, that's not what it does.
लेकिन सिर्फ इतना ही विज्ञान नहीं करता.
But yes, there's a very strong trend of materialism, certainly in the modern West.
लेकिन आधुनिक पाश्चिमात्य जगत में भौतिकता का बहुत ही ऐसा प्रभाव है.
It's what the Buddha called nihilism.
और जिसको बुद्ध ने उच्छेदवाद भी कहा है.
In other words, the belief that the physical being is all that there really is.
दूसरे शब्दों में ऐसा विश्वास कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है.
And that you know, consciousness in philosophical terms is an epiphenomenon. It's like a glow on the surface of matter.
और फिजियोलॉजिकल टर्म्स में ये जो आपका चित्त है ये है जैसे ऊपरी भाग पे सिर्फ चमक है.
Perhaps the main thing is that we leave the question open.
तो महत्व की बात ये है कि इस प्रश्न को हमेशा हमने खुला छोड़ना है.
The main thing is that we recognize the ultimate mystery of things.
और महत्व की बात ये है कि चीजों का जो रहस्य है उसके बारे में उसे भी हमने पहचानना है.
I heard recently a Western philosopher of science talking about what science is.
तो मैंने विज्ञान के बारे में एक नई नई बात सुनी है. इसमें कहा गया है कि विज्ञान क्या है.
He said that science is a sophisticated statement of ignorance.
तो ऐसा कहा जाता है कि अज्ञान का एक बहुत ही अच्छा ऐसा
sophisticated statement of ignorance. Difficult to translate, I'm sure.
लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि अज्ञान को बताने वाला साइंस जो है बहुत ही अच्छा एक तरीका है.
Scientific theory is a way of saying you can look at it this like this, but I don't really know.
तो विज्ञान में आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसके तरफ ऐसा देख सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है.
Unfortunately, I missed the astrophysics earlier. I thought it was going to be in Hindi, but I'm sure that there you'd have heard, you know, something of that mystery.
तो आज का जो सत्र हुआ था एस्ट्रोफिजिक्स का, मैंने वो मिस कर दिया. मुझे लगा कि वो शायद से हिंदी में होगा, लेकिन वहाँ पे आपने ऐसी कुछ बातें सुनी होगी.
Ultimately, this life is impossible to understand fully.
क्योंकि अंत में ये जो जीवन है आपके लिए समझना बहुत ही असंभव ऐसी बात है.
We can only understand it through direct experience.
एकदम सीधे अनुभव के आधार पर ही हम इसे समझ सकते हैं.
All our descriptions of it, all our analyses of it, well, they may be helpful, but they don't ultimately tell us about it.
तो इसके जितने भी वर्णन हैं या विश्लेषण हैं, इसको समझने में हमें मदद मिल सकती है, लेकिन वो उतने परिपूर्ण नहीं हो सकते.
There are ways of thinking about it.
तो इसके बारे में सोचने के कुछ तरीके हैं.
But the thing itself is something else.
लेकिन असली जो बात है वो कुछ और ही है.
So even a theory like rebirth, one should hold it very lightly.
तो फिर पुनर्जन्म की भी जो सिद्धांत है, आपको उसे बहुत ही हल्के तरीके से लेना चाहिए.
And perhaps in the end, our only really honest position is agnosticism.
और agnosticism.
Not knowing.
और अंत में हमारी जो सही परिस्थिति वो है, वो ऐसी है कि हम वास्तव में नहीं जानते.
That's my position in the end.
तो अंत में मेरी तो यही स्थिति है.
The Buddha is my teacher and I accept his teaching.
तो बुद्ध मेरे गुरु है और उनकी शिक्षा मैं स्वीकार करता हूँ.
I find what he says about rebirth very, very believable.
तो पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने जो भी सिखाया है, मुझे लगता है कि वो बहुत विश्वसनीय है.
I have a certain amount of experience that seems to conform to it.
तो मैंने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है जिससे मुझे लगता है कि ये उसके साथ जाता है.
But I'll wait and see.
लेकिन मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा. 22 hours.
Okay. चलो. Can you give me the question?
हाँ. तो जब हमें कोई कहता है कि ये मत करो, तो आमतौर पे हम वही चीजें कहते हैं. तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं दी गई है, उनके बारे में भी ऐसा है. बहुत सारे लोग जो उस प्रतिज्ञा में कहा गया है वो नहीं करते, तो क्या उन प्रतिज्ञाओं को नए तरीके से लिखने की आवश्यकता है?
So can you just give me it again? What is it?
Yeah. When someone asks us, do not do this, generally all do that thing. Our 22 oaths given by Dr. Baba Saheb Ambedkar are of same type. So most of our people do not do that things. So most of our people do that things. Do we need to restructure these oaths?
Oh. I suppose the only way you could restructure them so that people did do them would be to, well, break the precepts.
तो एक ही तरीका हो सकता है कि उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, अगर लोग ऐसा करते हैं तो आप जो है शीलों का मतलब शीलों को तोड़ते जाओ.
I must say, I think the 22 pratigyas are very important.
मुझे लगता है कि 22 प्रतिज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.
And I can't myself see why they need revision.
और मुझे नहीं लगता है कि क्यों उसे वापस एक और बार देखना चाहिए.
In fact, interestingly enough, when we started introducing Buddhism among the gypsies in Hungary, we devised a list of 22 vows for that situation.
तो बहुत ही रोचक ऐसी बात है कि जब हमने हंगेरी जिप्सी लोगों को बौद्ध धर्म सिखाना शुरू किया, हमने भी एक सूची तैयार की उनकी परिस्थिति के अनुसार, जो कि इन प्रतिज्ञाओं जैसी.
It's very important to recognize just how much Dr. Babasaheb Ambedkar expected of people entering Buddhism.
तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे थे उनसे बाबा साहब को कितनी अपेक्षाएं थी।
I think this is not widely understood by his own followers and let alone by others.
और उनके अपने अनुयायी भी हैं इन बात को नहीं समझ सकते और दूसरे तो उन्हें छोड़ ही देते
हैं। After all, his people at that time were amongst the poorest and most ignorant in India.
तो उस समय उनके जो अनुयायी थे तब के सबसे गरीब और नजरअंदाज किए जाने वाले तबके से थे।
But he paid them the honor of expecting real practice from them.
लेकिन उन्होंने उसको उनको इतना सम्मान दिया कि उन्होंने सच्चे आचरण की उनसे अपेक्षा की।
But it's not surprising people have found it difficult to keep up.
लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके साथ जीना लोगों को मुश्किल लगा।
In the first place, they had so little guidance immediately after conversion.
क्योंकि सबसे पहले तो धर्मांतर के तुरंत बाद ही उनके पास कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं था।
After all, Dr. Ambedkar went just 6 weeks later.
क्योंकि सिर्फ 6 हफ्तों में बाबा साहब गुजर गए थे।
And it's not surprising. Well, he would have been able to create some structure and some order to teaching.
तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर वो होते तो उन्होंने एक ढांचा निर्माण किया होता ताकि लोगों को सही आचरण में मदद मिलती।
But it just didn't happen.
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
Most people were left completely without guidance.
और बहुत सारे लोग किसी भी मार्गदर्शन के बिना वैसे ही रह गए।
It's not surprising that they weren't able to really live up to the vows that they took.
और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो प्रतिज्ञाएं फिर उन्होंने ग्रहण की थी वैसे वो अपना जीवन नहीं जी सके।
Of course, some did.
कुछ लोगों ने ऐसा किया।
But many didn't.
लेकिन बहुतों ने ऐसा नहीं किया।
And I don't think it's at all surprising.
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है।
They didn't really know how to. Nobody told them.
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह से आचरण किया जाए, किसी ने उन्हें बताया नहीं।
Dr. Ambedkar expected a big response from the Buddhist world.
बाबा साहब को बौद्ध जगत से बहुत बड़े प्रतिसाद या प्रतिक्रिया की उम्मीद थी।
But it didn't come.
लेकिन वैसा हो नहीं पाया।
It just came a lot later, and oddly, a lot of it came from the West.
और ये जो प्रतिसाद है बहुत देर से आया और बहुत सारा जो है वो पाश्चिमात्य जग से आया।
But yes, that's the first thing that people just didn't get the guidance they needed.
लेकिन पहली बात तो यही है कि लोगों को जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता थी वो उन्हें नहीं मिला।
The second thing is it's really difficult to practice the Dhamma.
और दूसरी बात यह है कि धम्म का आचरण करना सही में मुश्किल है।
I find it difficult.
मुझे भी वो मुश्किल लगता है।
And it's my whole life.
और ये मेरा पूरा जीवन है।
बाबा साहब said that you know, in order to practice the Dhamma, you need to stand alone.
बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि अगर आपको धम्म का आचरण करना है तो आपको अकेले खड़े रहना पड़ता है।
He said that to practice that Buddhism is a religion very difficult to practice.
वो ऐसा कहते थे कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो आचरण के लिए बहुत मुश्किल है।
Because you have to take responsibility for yourself and you have to change.
क्योंकि आपको खुद की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और आपको बदलना पड़ता है।
So yes, it's not surprising that it's been difficult for people to follow through.
और इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका आचरण करना लोगों को मुश्किल लगता है।
So should we change the 22 vows?
तो क्या हमें 22 प्रतिज्ञाएं बदलनी चाहिए?
Personally, I don't see any need to.
व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती।
My strategy is first of all to practice myself.
तो मैं जो चुनाव करता हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं आचरण करूँगा।
And to encourage others to practice and to help them do so.
और दूसरों को आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा और उनकी सहायता करूँगा।
If enough of us really take the Buddha Dhamma seriously, well, perhaps we can influence others.
तो अगर हम में से पर्याप्त मात्रा में भी लोग बौद्ध धर्म को गंभीरता से लेते हैं तो हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं।
My experience is there are a lot of people everywhere who, when you clarify what the Dhamma really means, they want to practice.
तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जब उनको आप समझाते हो कि धम्म सही मायने में क्या है तो वो उसका आचरण करना चाहते हैं।
So to me that the issue is not with the 22 pratigyas.
तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ कोई समस्या नहीं है।
But really the statement of basic Buddhism.
वो सिर्फ बौद्ध धर्म के मूलभूत ऐसे कुछ वाक्य हैं।
The statement of what you leave behind and what you take on.
तो ये ऐसे वाक्य है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या आगे लेकर जाना है.
And so I think if people take those seriously, if they take the refuges seriously, if they take the precepts seriously, well, they'll make good progress.
और अगर लोग इस चीज को गंभीरता से लेते हैं तो वो शरण गमन को गंभीरता से लेते हैं, शीलों को गंभीरता से लेते हैं और वो प्रगति करते हैं.
So as usual, let's start in the right place.
तो हमेशा की तरह जो सही जगह है वहां से हम शुरुआत करेंगे.
Here.
खुद से.
Start practicing yourself.
और खुद से आप आचरण की शुरुआत कीजिए. प्लीज डिस्टिंग्विश ड्यूटी एंड कर्मा.
Duty and karma.
So I'm not. Please refer section 100 of IPC. Indian Penal Code.
I'm afraid I'm not familiar with the Indian Penal Code. What's it say?
Okay, like if I see somebody is attacking you, and I am a police officer, so I have a right to shoot you if you are attacking someone else. So that was this example. So
right.
Please distinguish duty, because protecting you is my duty. And there is a tiger who has entered some in a village or something,
right.
And
yeah.
You have to shoot that tiger.
Right. Yeah.
Being an officer.
Yes.
And somebody also killed this komda hen cox because of that swine flu. Many birds were killed. They were ordered to kill. And then.
Yeah. Yeah. No, I quite understand the point.
So, इसमें क्या मुद्दा है ये मेरी समझ में आ गया है?
Sometimes one's put in. Yeah. Sometimes one's put in the very unpleasant position of having to choose the lesser of two evils.
तो कभी कभी दुर्भाग्य से व्यक्ति ऐसी संकट में फंस जाता है कि दो अकुशल कर्म रहते हैं और उसमें से कम अकुशल कर्म का उसे चुनाव करना पड़ता है.
And so in order to protect one thing, you maybe have to even destroy another.
तो एक चीज का बचाव करने के लिए आपको दूसरी चीज को नष्ट भी करना पड़ता है.
I remember my teacher being asked this in a very small on over a very small issue.
तो एक बहुत ही छोटे से समस्या को लेके मेरे गुरु को भी ऐसा प्रश्न किया गया था.
In England, well, of course we love roses just like you do here.
तो इंग्लैंड में आप जैसे यहाँ पे गुलाब को पसंद करते हो हम भी करते हैं.
And in England there's a particular insect called a green fly that eats the bud of the rose.
और वहाँ पे एक green fly नाम का एक जो कीड़ा रहता है वो गुलाब की जो कली रहती है उसको वो खा लेता है.
And so the gardener at the retreat center where Sangharakshita was living asked a very difficult question of this kind.
तो फिर वहाँ का जो माली था शिविर केंद्र का वो संगरक्षित के पास गया और बहुत ही मुश्किल ऐसा अभी के जो सवाल के जैसा सवाल उन्होंने उसे पूछा.
And the question was, well, should you use insect killer to kill the green fly?
तो उन्होंने पूछा कि क्या आप वो कीटनाशक इस्तेमाल करके उस कीड़े को मार डालेंगे?
So Sangharakshita's answer was, well, it depends whether you're growing green fly or roses.
तो उन्होंने कहा कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप मतलब वो कीड़े की पैदाइश कर रहे हो या गुलाब की पैदावार
कर रहे हो. You can't have both.
तो आप एक ही वक्त पे दोनों नहीं रख सकते.
So as a police officer, it depends whether you're trying to protect murderers or victims.
तो फिर अगर आप पुलिस अधिकारी हो तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप किसकी सुरक्षा कर रहे हो, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है या जो अन्याय कर रहा है, हत्या कर रहा है.
And I do very much sympathize with those who take on this protective responsibility within society.
और इस प्रकार की जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उठाते हैं, ऐसे लोगों से मैं बहुत सहानुभूति रखता हूँ.
I have a lot of sympathy with the police.
और पुलिस लोगों से मुझे बहुत ही सहानुभूति है.
This is a bit unusual, I know, in India.
तो भारत में आमतौर पर ऐसा नहीं होता.
But I value the police.
लेकिन मैं पुलिस का बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ।
Because well, if we didn't have the police, maybe we'd have even worse.
तो क्योंकि अगर हमारे पास पुलिस नहीं होते तो शायद बहुत ही बुरी परिस्थिति होती।
Because there are forces within society that are uncontrollable.
क्योंकि समाज में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।
You see what happens in a country where law and order breaks down completely.
तो आपको पता है कि ऐसे देशों में क्या होता है जहाँ पे कायदा और सुव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाती है।
I've been just reading about Somalia.
तो अब हम सोमालिया के बारे में हाल ही में पढ़ रहे थे।
All central government completely broken down.
तो पूरा जो वहाँ का केंद्रीय सरकार है पूरी तरह से नष्ट हो गया।
It's just the rule of the strong.
तो वहाँ पे जो ताकतवर है उसका ही वहाँ पे कायदा चलता है।
So I think society needs the use of a force in the shape of a police force to try to control those elements.
तो इस तरीके के जो मतलब घटक हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ऐसी यंत्रणा जो है वो बहुत ही आवश्यक है।
And I'm very glad that there is a police force even in India.
और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि भारत में भी ऐसे पुलिस फोर्स हैं।
We know that the police force in India is not perfect.
हमें मालूम है कि भारत का पुलिस उतना परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है।
But I'm glad to say that many police do come on our retreats. We've got police in our order.
तो लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत सारे पुलिस है जो हमारे शिविरों में आते हैं और हमारे संघ में भी पुलिस ऑफिसर हैं।
I don't mean that we've got our own police force. I mean that there are members of the Indian police who are in our order.
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा अपना एक पुलिस फोर्स है, लेकिन ये मैं बात याद दिलाता हूँ कि हमारे संघ में भी पुलिस सदस्य हैं।
And I'm very pleased with that. I'm very proud of that.
और उससे मुझे बेहद खुशी होती है, मैं एक गर्व की अनुभूति करता हूँ।
And I think police have a very difficult job.
और मुझे लगता है कि पुलिस बहुत ही मुश्किल ऐसा काम करते हैं।
But actually they need to be the most moral people in society.
लेकिन उन्होंने ही वास्तविकता में सबसे समाज के सबसे नैतिक व्यक्ति होना चाहिए।
I remember once at a center in England, I was the manager of that center.
तो मुझे याद है इंग्लैंड में एक शिविर केंद्र है और वहां का मैं व्यवस्थापक था।
And a police officer came to see us.
और एक पुलिस अधिकारी हमें देखने आए।
Some girl had run away from home and they knew she was interested in Eastern religion.
तो एक लड़की जो अपने घर से भाग गई थी और उन्हें पता था कि इस लड़की का पूर्व के जो धर्म है उनमें कुछ रुचि है।
So they thought she might have come to us.
तो उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद हमारी तरफ आई होगी।
Well, you know, she hadn't, of course.
लेकिन वो आई नहीं थी।
But we invited him in. We gave him a cup of tea.
लेकिन हमने उन्हें अंदर बुलाया, हमने उन्हें चाय दी।
And after a while, he started crying.
और थोड़ी देर बाद वो अचानक से रोने लगे।
He said, "You don't know what it's like being a policeman."
तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि एक पुलिस होना कैसा होता है।
All you know are other policemen and criminals.
तो आप सिर्फ इतना जानते हो कि दूसरे पुलिस वाले हैं और गुनेगार हैं।
And the ordinary public, they avoid you. They're not pleasant with you.
और जो सामान्य जो जनता होती है वो आपको नजरअंदाज करती है।
But you've treated me like a human being.
लेकिन आपने एक मनुष्य की तरह मेरे से बर्ताव किया।
And so I really, since then, I've looked at policemen in a new light.
और फिर तब से पुलिस को मैं एक नए प्रकाश में देखने लगा।
I do wish there was not corruption in the police force in India.
तो मैं दिल से चाहता हूँ कि पुलिस फोर्स में भ्रष्टाचार ना हो।
One of our dhammacharis, well, when he entered the order, actually when he became a Dhamma Mitra, when he started a serious involvement with us, decided he was no longer going to take any corruption.
तो एक हमारे धम्माचारी है, जब वो धम्म मित्र बने वो पुलिस फोर्स में थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसके आगे मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा।
His income went down by to a third of what it had been.
तो जो भी फिर उनका आमदनी थी वो एकदम एक तिहाई हो गई।
And he said he got a lot of pressure from his superiors and his inferiors. Because he wouldn't engage in that.
और फिर उन्होंने कहा कि उसके जो वरिष्ठ थे या उनके नीचे भी काम करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर बहुत दबाव डालते थे क्योंकि वो अब नहीं लेते थे पैसा।
So I do believe we need a police force.
तो मुझे सही में ऐसा लगता है कि पुलिस फोर्स की हमें आवश्यकता है।
But let it be a police force of people who keep the precepts.
लेकिन ये ऐसे लोगों का पुलिस फोर्स होना चाहिए जो शीलों का आचरण करते हैं।
And if they have to take action that does cause harm, let them see what they're doing, as it were.
और ऐसे कोई कृति उनको अगर करनी भी पड़ती है कि जिससे कुछ हिंसा होती है तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसका उन्होंने समाधान करना चाहिए।
Let it not be simply a manifestation of a personal, well, sort of sadism, you could say, interest in causing pain.
तो उनका व्यक्तिगत ऐसा कुछ अनुभव नहीं होना चाहिए कि जिसके वजह से उन्हें वो दुख की अनुभूति होती है।
So yes, society does need that sort of protection.
तो इस तरीके के संरक्षण की समाज को आवश्यकता है।
And I honor those who accept that responsibility for us.
और मैं उनका सम्मान करता हूँ जो हमारे लिए ये जिम्मेदारी उठाते हैं।
And yes, there are times when you just find yourself having to act forcefully to save something worse happening.
और कभी-कभी आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ तो भी बहुत बुरा होने से बचाने के लिए आपके ऊपर दबाव होता है बुरा करने का।
I've never had to do that myself.
तो ऐसा मुझे खुद को तो नहीं करना पड़ा है।
But I think I wouldn't hesitate if I saw somebody being attacked and I was in a position to stop it.
तो मुझे लगता है कि मुझे कोई संकोच नहीं होगा अगर मैं देखता हूँ कि किसी के ऊपर कोई हमला हो रहा है और मेरे पास मतलब साधन है कि मैं उसको रोक सकता हूँ।
Or rather, what would stop me would be cowardice rather than morality.
और अगर कोई चीज मुझे रोकती है तो वो मेरी नैतिकता नहीं है, वो मेरा डर है।
या ठीक है, सब क्वेश्चन। Ah, yes,
Unless
good.
There is an effect.
Yeah.
But his killing, it is
yes, good point. Yeah.
Is there effect of that karma action?
Sometimes you also feel compassion. So sometimes you also feel compassion for that person. So there are two factors.
Yeah.
So should we show compassion or should we kill him?
Yeah. just first of all to take Anomadasi's point. Of course, that's a very important one which I should have referred to.
तो पहले हम अनोमदासी का जो प्रश्न है उसको लेते हैं। बहुत ही महत्व का वो मुद्दा है और मैंने इसके बारे में बात करनी चाहिए।
The point is you intend to protect, not to kill. If you see what I mean.
तो मुद्दा ये है कि आपका उद्देश्य वहां पे जो है किसी को बचाना है, किसी की हत्या करना नहीं है।
That's what you're aiming to do. That's your intention.
और वो आपका उद्देश्य है, उसके वो आप करने जा रहे हैं।
So that really is the criterion in the end.
और अंत में यही जो है चीज आपको लगाकर देखनी पड़ती है, परीक्षण।
Dr. Ambedkar refers to this in the Buddha and his Dhamma.
और बुद्ध और उनका धर्म, इसमें बाबा साहब भी इसका उल्लेख करते हैं।
He talks about it as the need to kill as a soldier rather than the will to kill.
तो वो ये बात करते हैं कि किसी को मारने की जरूरत और किसी को मारने की इच्छा।
So you act to protect.
तो आप कृति करते हैं क्योंकि आप बचाव करना चाह रहे हैं।
And protecting may involve harming another.
और इस बचाव में शायद आपको दूसरे को हानि पहुंचानी पड़ सकती है।
But yes, the point about feeling compassion is very difficult one.
लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसके लिए मतलब करुणा का अनुभव करना मुश्किल लगता है।
And I think it's probably the most difficult thing about being a soldier or an officer in the police force or anybody who has to punish.
और
It's the difficult thing about being in a position where you have to punish or harm others in the interests of protection.
तो ऐसी स्थिति में होना जहाँ पे आपको दूसरे का बचाव करने के लिए किसी को हानि करनी पड़ती है या किसी को कुछ शिक्षा देनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में होना सही में मुश्किल बात है।
It's very difficult to keep a sense of compassion while you're causing harm.
तो जब आप इस तरीके से हानि पहुंचा रहे हो तो अंदर करुणा रख पाना बहुत मुश्किल है।
And I think probably for most of us it's virtually impossible.
और हम में से बहुत लोगों के लिए ये असंभव ऐसी बात है।
But I suppose that if you were in that position and you were meditating, you'd have to reflect very deeply on this issue.
लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं और अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं तो इस बारे में आपने बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।
And then there was a question about is there a karmic effect?
और फिर और एक सवाल था कि इसका कुछ कार्मिक विपाक या परिणाम होता है क्या?
You'd have to consult your experience.
तो आपको अपने अनुभव से प्रश्न पूछना चाहिए।
How did you feel after you had to take that action?
तो वो कृति करने के बाद आपने अंदर क्या महसूस किया था?
And you probably would feel some pain.
और निश्चित ही आपने अंदर कुछ दर्द महसूस किया होगा।
And I think the danger is that you don't feel that pain.
और खतरा तो तब है कि अगर इस तरीके का दर्द आपको महसूस नहीं होता है।
That you blunt your compassion.
क्योंकि तब आपका करुणा जो है वो पूरी तरह से blunt या खुरदरी ऐसी हो जाती है।
But I think if you're in that position, it's going to be very difficult for you when you start to meditate.
लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं और अगर आप ध्यान करना शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है।
And it might be that in the end you feel you need to do a different job.
और अंत में शायद आप ऐसा भी कुछ महसूस करोगे कि आपको दूसरी कोई नौकरी करनी चाहिए।
But you'd have to see what effect it had upon you.
लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है।
And I'd much rather that there were practicing Buddhists as police than not.
लेकिन मैं तो ऐसा ही देखना चाहूंगा कि आचरणशील बौद्ध ही पुलिस में हो ना होने के बजाय।
People who are really trying to keep some values, some morality.
ऐसे लोग जो सही में कुछ नैतिकता या मूल्यों को रखते हैं, लेकर जीते हैं।
But I think they'd find it quite difficult. They'd have to, they'd need to talk quite a bit about what was going on inside them.
लेकिन उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है और उनके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में भी उन्हें बात करने की बहुत आवश्यकता होती है।
A difficult question.
तो बहुत मुश्किल ऐसा सवाल था।
और कुछ? बस। Anything else? I think Jivak was going to throw me a googly.
We were discussing about suffering. And we were at the point that when you realize non-selfhood, anatma, the suffering that is just vanishes because there is no one who is suffering. But the question arose that what about people who are suffering and you see that suffering in the world and by seeing that you suffer because of that. So how to deal with that? That suffering.
Right.
Not your own suffering, but people suffering who are causing suffering to you.
People that who are suffering that you're suffering because of, yeah. Yeah. Get the police in. That's the answer. Hindi me?
Hindi me, bata dijiye.
Acha. Prashna asa tha ki humse discussion asa tha ki dukh ji aa raha hai. Teen lakshana jo apan paata hai, pratyek jeevana mein dukh aa raha hai. Parantu tyas barobar apan jar anatma आनात्माचा जर आपण विचार केला त्याच्यावर जर चिंतन केलं तर आपल्या लक्षात येते की जर आनात्मा असेल तर दुःख राहतच नाही स्वतःचं जे दुःख आहे ते तिथे थांबत नाही परंतु मग जगामध्ये आपण दुःख पाहतो आणि बऱ्याच लोकांना अन्न मिळत नाही अनेक प्रकारे त्यांना यातना सहन कराव्या लागतात आणि मग हे बघून आपल्या मनामध्ये एक दुःख उत्पन्न होतं मग ह्या दुःखाचं काय करायचं
काय करायचं सर वेल I'm afraid the question begs all sorts of questions.
Beg question?
Begs all sorts of questions. The question asks all sorts of new questions.
तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सवाल जो है और कई सवालों को जन्म देता है।
So first of all, what do we mean by realizing anatta?
तो सबसे पहला सवाल ये है कि anatta का मतलब क्या है?
Well, in brief, it means becoming selfless.
तो इसका एक मतलब है कि आप स्व से रिक्त हो जाते हो।
What does being selfless mean?
लेकिन स्व से रिक्त होने का क्या अर्थ है?
Well, I suppose to answer that, you have to ask, what is it to be selfish?
तो इसका अगर जवाब देना है तो और एक सवाल पूछना पड़ेगा कि फिर स्व के साथ होना, स्वार्थी होना मतलब क्या?
But usually everything we do refers back to me.
लेकिन कोई भी जो कृति हम करते हैं वो वापस मुझ तक आती है.
Everything I do in the end I do because I think it will enhance me.
तो अंत में जो कुछ भी मैं करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरा कुछ तो भी अच्छा होगा.
You know, I may be generous, but I'm being generous because in the end I know that will be good for me.
तो मैं बहुत दानी हो सकता हूँ लेकिन मैं इसलिए दानी बनता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अंत में इससे मुझे लाभ होगा.
I'm feeling Maitri, but in the end I'm feeling Maitri because that refers back to me.
तो मैं मैत्री कर सकता हूँ लेकिन मैं मैत्रीपूर्ण इसलिए बनता हूँ क्योंकि अंत में वो वापस मुझ तक आती है.
My Maitri for others is based on my Maitri for myself.
तो दूसरों के साथ मेरी मैत्री खुद के साथ मेरे मैत्री पर आधारित है.
So you could say that's enlightened selfishness.
तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक तरह से एक प्रबुद्ध
the English enlightened there. Okay. What would be the right word? That's intelligent self-interest, yeah?
तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही समझदारी वाला बौद्धिक ऐसे ये स्वार्थ है.
Your best interest is to be somewhat selfless.
तो आपका सबसे अच्छा जो आकर्षण है ये है कि स्व से रिक्त होना.
And that's really what happens with karmic development.
और कर्म के जो कर्मिक जो विकास है lost.
In karmic development, you become more and more intelligent about being selfish.
तो कर्मिक जो विकास है उसमें आप और ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान बनते जाते हो स्वार्थ रहित होने के लिए.
So you're able to consider others, you're able to act on for the benefit of others because you know it's good for you.
तो आप दूसरों का विचार करते हो, उनके बारे में सोचते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए अच्छा है.
All karmic development is based on I.
तो ये जो सारा कर्मिक विकास जो है मैं पर आधारित है.
But a point comes where you realize there is no permanent I.
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप को इस बात की जब आप इस बात को समझते हैं कि नित्य या हमेशा रहने वाला ऐसा मैं कोई नहीं है.
A point comes where you stop clinging to this notion of I.
और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इस मैं के साथ चिपक कर रहना आप बंद कर देते हैं.
And your actions become selfless.
और फिर आपकी जो कृतियां हैं वो स्वार्थ रहित हो जाती हैं.
I always think of Dr. Ambedkar in this respect.
तो इस संदर्भ में वापस आपको देखूंगा.
There are many, many examples of his very immediate response to other people's suffering.
तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां वो एकदम से दूसरे के दुख को एक प्रतिसाद देते हैं.
It doesn't look as if he was thinking of himself at all.
और ऐसा दिखता है कि वो कभी भी खुद के बारे में सोचते ही नहीं थे.
And yes, I can think of other examples from other places.
और दूसरी जगह से भी कई ऐसे उदाहरणों के बारे में मैं सोच सकता हूँ.
So a point comes where you stop referring to I.
तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ पे आप ये मैं कहना बंद कर देते हो.
So what happens at that point?
तो उस वक्त क्या होता है?
You're open to the world.
आप पूरे जग के लिए खुले हो जाते हैं.
You feel yourself completely interrelated with everything around you.
और आप ऐसा महसूस करते हो कि आपके इर्द-गिर्द जो भी है उस सब से आपका संबंध है.
You're sensitive to the suffering around you.
और फिर आपके इर्द-गिर्द जो दुख है उसके प्रति आप संवेदनशील हो जाते हो.
But you can't really say that you suffer because of that.
लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से आपको दुख होता है.
It doesn't cause you any personal suffering.
क्योंकि उसकी वजह से कोई भी व्यक्तिगत दुख आपको नहीं होता.
But you see the suffering and you respond.
लेकिन आप दुख को देखते हो और उसको आप प्रतिसाद देते हो.
You don't even think about it, you just respond.
आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो और आप उसको प्रतिसाद दे देते हो.
It's not pity.
इसका अर्थ दया नहीं है.
No, it doesn't work, does it? In English, pity has got a sentimental flavor. The word pity. Daya too?
दया मुझे बहुत दया दूसरा शब्द दया
yeah well in English pity has that oh you poor thing
दया
yeah okay ठीक है दया I thought दया was a nice word
no
okay. I like दया anyway yes it's a sort of sentimental oh you poor thing you're suffering let me help you
तो एक प्रकार से ऐसे आप भावनिक हो जाते हैं कि गरीब बेचारा अरे रे मुझे आप इसको मदद करनी चाहिए
compassion is not like that
लेकिन करुणा ऐसी नहीं होती
your own mind is completely undisturbed
तो आपका खुद का जो मन रहता है वो विचलित नहीं होता
but you see that there's a need
लेकिन आप देखते हो कि वहाँ जरूरत है
you see the suffering which you can help
तो आप देखते हो कि ऐसा कुछ दुख है जहां आप मदद कर सकते हो और आप उसको प्रतिसाद देते हो
without thought, without plan, you just respond.
तो आप कोई विचार नहीं करते कोई आप का ऐसा प्लान नहीं होता और आप सिर्फ प्रतिक्रिया देते
once you stop thinking in terms of self, well, you think in terms of just contributing.
तो जब आप स्व के बारे में सोचना मैं के बारे में सोचना बंद कर देते हो तब सिर्फ आप योगदान देने के बारे में सोचते हो
जस्ट रेफरिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ रीबर्थ आई हैड अ कन्वर्सेशन विद संगरक्षिता रिसेंटली
तो मैं वापस वो पुनर्जन्म के प्रश्न की तरफ आता हूँ तो हाल ही में संगरक्षित जी के साथ मेरा कुछ संवाद हुआ
He's 86 years old.
तो वो अब 86 साल के हैं
एंड he said to me that a lot of people ask him does he think about death
तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या आप मृत्यु के बारे में सोचते हो
It's a very tactful question to ask somebody who's 86.
तो जो व्यक्ति 86 साल का है उसको बहुत ही ऐसा सवाल पूछा जाना
But anyway, he said, well, my answer is no more than usual. I always think, I always thought about death.
तो वो कहते हैं मैं ऐसा उत्तर देता हूँ कि हमेशा लोग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मैं नहीं सोचता हूँ मैं हमेशा मृत्यु के बारे में सोचता हूँ
but I have been thinking more about rebirth.
लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि अभी मैं पुनर्जन्म के बारे में ज्यादा सोचने लगा
And he said several things which were very, very interesting.
और उन्होंने बहुत सारी ऐसे बात की जो बहुत ही रोचक थी
It quite took me by surprise. I wasn't expecting him to say these things, yeah?
और मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा वो कुछ कहेंगे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ
The first thing he said, he's hoped he'd be reborn as one of those beings who did not experience sexual attraction.
तो वो ऐसा कह रहे थे कि मुझे आशा है कि मैं ऐसे किसी जीव में मेरा पुनर्जन्म होगा जिसे किसी भी प्रकार का शारीरिक आकर्षण महसूस नहीं होता
causes such a lot of problems
kyunki uski wajah se bahut sari samasyaen nirman hoti hai
but then he said that he didn't really want to come back
aur fir unhone kaha ki wo sahi maane mein wapas nahi aana chahte
he said he's had a happy life and he's had a successful life
unhone kaha ki unko ek anandi jeevan mila hai aur ek yashashvi unka jeevan
but he doesn't find the idea of living again at all attractive
और इसलिए वापस जीना है ऐसी कोई कल्पना उन्हें उतना आकर्षित नहीं करती
doesn't really want to come back into the world.
तो इस दुनिया में वो वैसे वापस आना नहीं चाहते
Which implies, of course, that he's experiencing something better.
तो इसका शायद ये भी मतलब होता है कि वो और बहुत कुछ अच्छा ऐसा अनुभव कर रहे हैं
He doesn't mean he just wants to go to sleep for eternity.
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम चिरकाल तक नींद में चला जाना चाहते हैं
So then, well, that raises a question. Well, what happens if you don't want to come back?
तो फिर और एक सवाल आता है कि अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो क्या होता है
Traditionally, well, you don't.
तो परंपरागत तौर पे आप नहीं आते
What brings us into this life is attachment to it.
तो हमें इस जीवन में अगर वापस कुछ लाता है तो हमारी खुद की इस जीवन के प्रति आसक्ति
So he said, well, there wasn't any of that attachment.
तो उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसी कोई अभी आसक्ति उनमें नहीं है
So then he said, but still, there's the bodhisattva vow.
लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर भी बोधिसत्व प्रतिज्ञाएं तो है
That is the vow to help living beings.
और ये तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैंने सजीवों को मदद करनी है
that of course is what ends the Buddha and his Dhamma
और इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ का अंत होता है.
First of all, there's the four bodhisattva vows.
सबसे पहले वहाँ चार बोधिसत्व प्रतिज्ञाएं हैं.
And then the vow to be reborn in the land of his birth.
और फिर उस बोधिसत्व की जन्मभूमि पे जन्म ग्रहण करने की प्रतिज्ञा है.
Yes, there's that vow to bring you back.
तो ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो आप वापस आने के लिए करते हैं.
So you could say, well, one who is still selfish is attached to living.
तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो स्व से युक्त है तो वो वापस जीने के लिए आसक्त है.
One who is selfless lives to help others.
लेकिन जिसमें अभी स्व नहीं है वो स्व से रिक्त है तो वो इसलिए जीता है ताकि वो दूसरों को मदद कर सके.
But you certainly couldn't describe Sangharakshita as sentimental.
लेकिन इससे आप संगरक्षित को भावनिक ऐसा नहीं कह सकते.
Sentimental, okay. Pity is not in his vocabulary.
तो दया ये जो शब्द है उनके शब्दकोश में नहीं है.
He's quite a clear, logical, unsentimental person.
तो वो बहुत ही स्पष्ट तर्क पे आधारित और भावना विरहित ऐसे व्यक्ति हैं.
Yes, he's full of goodwill.
तो बहुत सी अच्छी ऐसी भावनाएं उनके अंदर हैं.
But not that sentimentality.
लेकिन उस तरीके की वो भावनिकता उनमें नहीं है.
But he sees there's a need.
लेकिन वो एक जरूरत को देखते हैं.
He sees the world needs the Dhamma.
और वो ये देखते हैं कि दुनिया को धम्म की आवश्यकता है.
People are lost because they don't have the Dhamma.
लोग खो गए एक तरीके से क्योंकि उनके पास धम्म नहीं है.
People are suffering because they don't have the Dhamma.
लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास धम्म नहीं है.
So he's motivated by a desire to help.
इसलिए ये जो मदद करने की भावना है इससे वो प्रेरित होते हैं.
But I don't get the impression of him that he suffers.
लेकिन मुझे ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसकी वजह से वो दुखी हो रहे हैं.
I hope that's made a rather difficult subject clear.
तो मुझे आशा है कि एक बहुत ही कठिन ऐसे विषय को इससे कुछ स्पष्टीकरण मिला होगा.
When you become genuinely selfless, you're not suffering.
तो जब आप सही मायने में स्व से रिक्त हो जाते हो, स्व नहीं रहता आपके अंदर, तो आपको दुख नहीं होता.
You see the suffering around you.
तो आप अपने इर्द-गिर्द के दुख को देखते हो.
You're not closed to that.
आप अपने आप को उससे बंद नहीं करते.
And you respond to it.
और आप उसको प्रतिसाद देते हैं.
And in fact, that's what keeps you living.
और इसी के वजह से आप जो है वो जीते रहते हैं.
This is the story of the Buddha, isn't it?
और यही बुद्ध की भी कहानी है.
The Buddha, after his enlightenment, the story goes, he thought, well, nobody will understand.
तो जैसे कहानी कहती है, आपको मालूम है, बुद्धत्व के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी को समझ नहीं आएगा.
You know, there's no point in trying to communicate my experience.
तो मैंने जो कुछ अनुभव किया है, वो दूसरों को बताने में कोई खास बात नहीं है.
So he thought, well, why don't I just, go off and meditate?
तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं सिर्फ जाऊं और ध्यान करते रहूं?
But then he realized that some people were a little bit open.
लेकिन फिर उन्हें ऐसे लगा कि कुछ लोग हैं जो कुछ मात्रा में खुले हैं.
And he could respond, he could help.
और वो उनको प्रतिसाद दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं.
So it's his response to the needs in the world that kept him living, kept him working for very, very hard for the remainder of his life.
तो ये जो दुनिया में जो जरूरत थे इसकी वजह से वो जीते रहे और पूरी अपनी जिंदगी जो है वो उनकी मदद करने में उन्होंने बिताई.
And were the direct recipients of that teaching.
और उन्होंने जो भी शिक्षा दी है उनको सीधे प्रत्यक्ष तौर से हमने ग्रहण किया और हम उसके अनुयायी हैं.
I think there's one more. In red pen.
In Buddhism, there is a term anatma, no atma. Then how can there be a life after death?
Huh.
Isn't this contradictory? Please explain more about anatma and rebirth. तो बौद्ध धर्म में एक शब्द है अनात्मा, जिसका अर्थ होता है कि आत्मा का ना होना. तो फिर आत्मा अगर नहीं है तो दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? तो क्या ये एक दूसरे को मतलब काटने वाली बात नहीं है? तो इसलिए इसके बारे में और बताइए, आत्मा के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में।
Well, the short answer is that again becoming is a question of continuity rather than identity.
तो वापस जो है पुनर्भव की जो बात है वो है एक प्रकार की निरंतरता की बात, वो एक पहचान की बात नहीं है।
So it's said that the new life is neither the same as nor different from the previous life.
तो ऐसा कहा जाता है कि नया जो जीवन है वो एकदम पिछले जन्म जैसा भी नहीं है और पूरी तरह से उससे अलग भी नहीं है।
It's the same as it in so far as there's a continuity of conditions.
तो परिस्थितियों की जो निरंतरता है उसके संदर्भ में वो सरी का ही है।
But it's different in so far as well they're not identical.
लेकिन वो एकदम वैसा ही नहीं है इसलिए वो अलग भी है।
Let's take the example of a river.
तो जैसे हम नदी का उदाहरण लेते हैं।
You know, there's the Indriani that flows at the middle of this valley.
तो इस खाई के वहाँ से इंद्रायणी नदी बहती है।
And of course it was in the Indriani that Tukaram sank his avangas.
और ये इंद्रायणी नदी में ही तुकाराम संत तुकाराम ने अपने ग्रंथ बहाए थे।
And they floated to the surface again.
और वापस वो डुबाने के बाद भी ऊपर आकर तैरने लगे थे।
I've seen the place where that is supposed to have happened.
तो जहाँ पे ये हुआ था वो जगह मैंने देखी है।
Well, is the river Indriani at that point the same as it was then, or is it different?
तो ये जो इंद्रायणी नदी है उस वक्त की और अभी की एक ही है क्या?
Enlightenment has come.
तो कुछ स्पष्ट हुआ?
Well, it's the same in so far as it flows in the same channel and so on.
तो ये वही नदी है क्योंकि उसी जगह पे ये बह रही है।
And we know that every year since then water has come down.
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसमें हर साल पानी आते जा रहा है।
But it's completely different molecules of H2O that have flowed there.
लेकिन अभी वहाँ पे पानी की जो बूंदे बह रही है वो पूरी तरह से नई बूंदे हैं।
It's the same with rebirth.
तो पुनर्जन्म का भी ऐसे ही है।
There's a continuity of conditions.
तो संस्कारों का परिस्थितियों का वो एक निरंतर भाव है।
But there's not a continuity of substance.
लेकिन पदार्थ का वहाँ पे कोई भी निरंतरता नहीं है।
In the very early theory of rebirth that you get in the Vedas, it's presented in a much more crude way.
तो वेदास में जो वेद में जो पुनर्जन्म के उल्लेख मिलते हैं उसे बहुत ही क्रूर तरीके से वहाँ पर रखा गया है।
It's early thinking.
लेकिन ये बहुत ही शुरुआती सोच थी।
I think it's the Rig Veda, but it talks about this little man, the size of my thumb, who resides in my heart and issues out at death.
तो शायद से ऋग्वेद है, मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें ऐसा बताया है कि एक अंगूठे के आकार का कोई एक इंसान होता है जो मेरे अंदर जीता है और फिर वो बाहर निकल कर आता है।
This is what I call the new car theory of rebirth.
तो इसको मैं नई कार जो रहती है उसकी थ्योरी बोलता हूँ पुनर्जन्म की।
You get out of your old car and you get into a new car.
तो आप अपनी पुरानी कार में से बाहर निकलते हैं और आप नए कार में बैठ जाते हैं।
The car is different, but you are the same.
तो कार तो अलग अलग है लेकिन आप वही हो।
But that's not the Buddhist theory.
लेकिन ये जो है बौद्ध विचार नहीं है।
If you like, that both the car and the driver are completely new.
तो यहाँ पर कार भी और व्यक्ति भी दोनों नए होते हैं।
But the one car arises in dependence on the next.
लेकिन पहली दूसरी कार जो है वो पहली कार पर आधारित निर्मित होती है।
But yes, the in short, the issue is of continuity but not identity.
तो यहाँ पर एक निरंतरता की बात है लेकिन यहाँ पर पहचान की बात नहीं है।
But actually, that's what's going on all the time.
लेकिन ये तो फिर हर समय हो रहा है।
There's a continuity between you when you arrived and you as you are now.
तो जब आप जैसे आए थे और अब आप जैसे हो इसमें भी एक निरंतरता है, सातत्य है।
But you're different.
लेकिन आप अलग भी हो।
Not completely different, clearly.
पूरी तरह से अलग नहीं हो स्पष्ट रूप से
but the, you know, the chapatis you've eaten the gulab jamun I hope you only had two they've changed you
तो नई चपातियां आपने खाई और गुलाब जामुन शायद आपने दो ही खाए तो इन सब चीजों से आप में बदलाव आया है
इवन द आइडियाज यू हैव टेकन इन द मेडिटेशन यू हैव डन
तो नए विचार आपने लिए हैं आपने ध्यान किया है
योर माइंड इज डिफरेंट
और आपका मन अलग है
इट्स रिलेटेड टू व्हाट केम इन बट इट्स नॉट द सेम एज इट
तो जो अंदर आया था उससे वह संबंधित है लेकिन वैसा ही नहीं है
इट्स जस्ट द सेम ऑन अ बिगर स्केल
और बड़े पैमाने पे भी ये ऐसा ही है
I think we better stop there. Yes, I thought it was rather amusing that we had gulab jamun for lunch just after I talked about it.
So, मुझे लगता है रुकना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात थी कि आज खाने में हमें गुलाब जामुन मिले.
After what I'd said, I only dared have one.
So, जो भी मैंने कहा था उसके बाद मेरी सिर्फ एक ही खाने की हिम्मत हुई.
I thought somebody would catch me having two or three.
तो मुझे लगा कि अगर मैं दो और तीन खाता हूँ तो कोई मुझे पकड़ लेगा.
But I did notice some people had three.
लेकिन मैंने ध्यान दिया कि कुछ लोगों ने तीन खाए
But anyway, after you had them, I'm sure you just let go of gulab jamun.
तो अभी क्योंकि आप खा चुके हो तो मैं सोचता हूँ कि अब आप उसको जाने दोगे
थैंक यू